नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश और मेरे साथ हैं अनीता।
मेरा भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।
दोस्तों, आपके लगातार SMS हमें हर बार एक नए विषय को लाने के लिए प्रेरित करते हैं।
जी हाँ दोस्तों, पिछले हफ्ते होली के कार्यक्रम के बारे में हमारे श्रोताओं ने हमें बहुत सारे SMS भेजे हैं।
जैसे कि उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला से विनोद जोशी कहते हैं कि होली के बारे में जो जानकारी उन्हें मिली उससे ऐसा एहसास होता है कि पूरा भारत एक धागे में पिरोए मोतियों की तरह है।
हमारे श्रोता जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है कहते हैं कि भारत के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में होली मनाने के तरीकों को सुनना बहुत अच्छा लगा।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन वर्ल्ड साउथ एशिया एक गैर सरकारी संगठन है जो विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है।
दोस्तों, अगर आप भी किसी सामाजिक विषय पर कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9811846246। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा।
तो अनीता, आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं?
सुरेश, उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ।
हाँ हाँ, पूछो।
अच्छा, ये बताओ कि हमारे जीवन के लिए भोजन और पानी कितना महत्व रखता है?
अनीता, हम खाने के बिना एक दिन तो रह सकते हैं पर बिना पानी पिए पल भर भी नहीं रह सकते। आखिर जल ही तो जीवन है।
ठीक कहा सुरेश, यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जल हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। पानी तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, पर क्या आपने कभी इस बारे में गहराई से सोचा है?
हाँ अनीता, मैं इस बारे में बिल्कुल सोचता हूँ।
दोस्तों, आने वाले 22 मार्च पूरे विश्व भर में वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो क्यों ना सुरेश आज हम इसी विषय पर बात करें।
हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व जल दिवस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा, 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस ये अपने आप में एक खास महत्व रखता है।
ये पानी के महत्व को जानने का दिन है, पानी बचाने के संकल्प का दिन है
और पानी के संरक्षण के विषय में समय रहते सचेत होने का दिन है।
दोस्तों, विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर डे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास से संबंधित सम्मेलन के दौरान सन 1992 में हुई थी।
दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर लगभग 1,40,000,000 घन किलोलीटर पानी है। इसमें से 17.5% पानी समुद्र में है जो खारा है। शेष 1.5% पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। इनमें से भी बचा हुआ 1% पानी नदी, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है जो पीने लायक होता है।
बिल्कुल सुरेश, इस 1% पानी का 60वां हिस्सा खेती और उद्योग कारखानों में खपत होता है और बाकी का 40वां हिस्सा हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई में खर्च कर देते हैं।
नदियां, जिन्हें पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, आज कारखानों और उद्योगों से विभिन्न प्रकार के रसायनों और अन्य कृषि अपशिष्ट पदार्थों से लगातार दूषित हो रही हैं।
तेजी से नीचे जा रहा भूमिगत जल का स्तर भी एक चिंताजनक विषय बनता जा रहा है।
अनीता, इन सब के अलावा पानी पाइपलाइनों के वाल्व की खराबी के कारण व्यर्थ में बह जाता है। पानी की इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमने बात की कुछ लोगों से, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
मेरा नाम संतोष है और मैं द्वारका में रहता हूँ और वहाँ पे बोरिंग का पानी है जो कि ग्राउंड लेवल का जो पानी है उससे उसका टेस्ट बहुत मैच नहीं करता है। जो बोरिंग का जो पानी है वो उसका जो क्वालिटी है इतना ठीक नहीं है और उसमें इन्फेक्शन भी ज़्यादा रहता है, प्लस उसका डाइजेशन का भी प्रॉब्लम रहता है।
मेरा नाम ईशांत है और जैसे लोग आजकल पानी को मिसयूज कर रहे हैं और उसके लिए से फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बारिश का पानी होता है उसको किसी डैम में या किसी जगह स्टोर करना चाहिए लाइक, ताकि उस पानी को सेव किया जा सके, राइट। और सेकंडली जो गंदा पानी है उसको भी सेव करके रखे ताकि उसको मतलब साफ करके यूज किया जा सके। और जो पानी ज्यादा यूज करते हैं उसके ऊपर भी वाटर टैक्स होना चाहिए लाइक, ताकि लोगों को इसका महत्व समझ आए, इम्पोर्टेंस पता चले वाटर की, क्या इम्पोर्टेंस है, इससे वाटर की मतलब कमी को दूर किया जा सकता है।
और मैं रहती हूँ रोहिणी में, लेकिन मेरे आसपास जो बस्तियाँ हैं सेक्टर 3 डेरा गाजी खान, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है और जो वहाँ टैंकर आते हैं कई बार भागा दौड़ में वहाँ पर मौत भी हो जाती है।
जी, मेरा नाम मनोज है, मैं जनकपुरी में रहता हूँ। पानी की समस्या तो आजकल बहुत है और जो भी नई नई जो फैक्ट्रीज वगैरह लगी है उससे जो जमीन के नीचे के स्रोत है पानी के वो भी सब खत्म होने को है, या जो नदियाँ वगैरह उनका पानी भी गंदा हो चला है, जो पीने लायक नहीं बचा है। इस वजह से कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं।
माय नेम इज राहुल, मैं इतना कहना चाहूंगा कि इतने सारे जो मॉल्स आ रहे हैं उनका जो पार्किंग बन रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर टेबल जो है अर्थ का डाउन होता जा रहा है। इस कारण से यहाँ पे तो पानी का प्रॉब्लम और हो गया है, अग्रेसिव हो गया है एज कम्पेयर टू और सब इलाकों के कंपैरिजन में ले रहे हो। तो इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग। और मेरे ख्याल सबसे बड़ी चीज़ है कि एवरीबॉडी हैज़ टू ट्राई एट हिज और हर ओन लेवल। अगर हर बंदा कुछ करेगा पानी क्या यहाँ पे हर चीज़ बच जाती है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज और आज हम बात कर रहे हैं विश्व जल दिवस के बारे में।
जल हमारे शरीर के अच्छे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर सुरेश क्या तुमने कभी सोचा है कि स्वच्छ पानी न होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?
बिल्कुल अनीता, स्वच्छ पानी न होने से जल जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं और इंडिया वाटर पोर्टल के अनुसार संसार में 5000 बच्चे हर रोज जल जनित बीमारियों से मर जाते हैं और भारत इन समस्याओं की श्रेणी में अग्रणी देश है।
पर सुरेश आंकड़े ये भी बताते हैं कि स्वच्छता के मामलों में अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए तो डायरिया, आंत्रशोथ जैसे दूषित जल से पैदा होने वाली बीमारियों से मरने वालों की संख्या में 25% की कमी लाई जा सकती है।
अनीता, स्वच्छता का संकट कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया में और भारत में आज भी लोग खुले में शौच करते हैं।
श्रोताओं, हाल ही में यूनिसेफ ने मध्य प्रदेश के गांवों और कस्बों के स्कूलों में एक सर्वे कराया था और जिनमें स्कूलों में पानी की कमी और शौचालयों की बदतर स्थिति उजागर हुई।
इसकी सबसे ज्यादा परेशानी युवतियों को उठानी पड़ती है क्योंकि स्कूलों में पानी या शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हो सुरेश, भारतीय नारियों को पीने के पानी के लिए रोज औसतन 4 मील पैदल चलना पड़ता है। एक तो इससे उनका बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है और दूसरे इससे उनकी सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
दोस्तों, इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सिराज केसर जी, जो वाटर कम्युनिटी इंडिया और इंडिया वाटर पोर्टल हिंदी से जुड़े हैं और जिनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी महिपाल।
सिराज जी, आपका हमारे कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में स्वागत है।
धन्यवाद आपका।
सिराज जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में मौजूदा जल प्रबंधन और नीतियों के सामने जितनी चुनौतियां हैं, क्या आप उन्हें विस्तार से हमें बता सकते हैं?
दक्षिण एशिया के स्तर पर अगर हम सोचते हैं तो कई तरह के संकट हैं। जैसे बांग्लादेश को हम देखें तो बांग्लादेश में इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आर्सेनिक की प्रॉब्लम है। पानी बहुत ज़्यादा उपलब्ध है लेकिन वो पीने लायक पानी नहीं है। अगर आप उनको पीते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां और यहाँ तक कि कैंसर के मरीज आप बन सकते हैं। भारत में देखते हैं पश्चिम बंगाल और बिहार इस समय आर्सेनिक के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अभी जो 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा अब आर्सेनिक से प्रभावित है। दिल्ली में कुछ स्पॉट ऐसे अब देखे गए हैं जहाँ पर आर्सेनिक की प्रॉब्लम आ रही है। और पानी के प्रदूषण की प्रॉब्लम तो है ही, इसके अलावा उनकी उपलब्धता का भी एक बड़ा संकट हो रहा है। आर्सेनिक का जो प्रॉब्लम है वो कई वजह से पानी में इस समय आ रहा है। सबसे ज़्यादा तो ये दोहन की वजह से आता है। पानी का जब अतिरिक्त दोहन करते हैं तो जो ज़मीन में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, जब अतिरिक्त दोहन आप करते हैं तो एक्वीफर में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो आदमी के लिए नुकसानदायक होते हैं। फिर अंडरग्राउंड वाटर में वो आने शुरू हो जाते हैं और बहुत नीचे से आप फिर पानी निकालने लगते हैं। तो जब वो आने शुरू हो जाते हैं और फिर इसके अलावा जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं जो विषैली चीज़ें हैं। जैसे सबसे ज़्यादा आर्सेनिक का प्रॉब्लम ये जो वाशिंग पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं उससे हो रही है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम। फिर जो हम लोग सौंदर्य प्रसाधन के बहुत ऐसी सारी सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें इस तरह के खतरनाक केमिकल होते हैं, अंततः वो जा करके धुल करके और जा करके वो पानी में मिल रहे हैं। और इसके अलावा भी पेस्टिसाइड से भी आर्सेनिक की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह के कई तरह से वो सोर्स के रूप में पानी में मिल रहा है। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि जो नदियां हैं, जो इन सब सारी चीज़ों को ह्यूमन वेस्ट को लेकर के एक तरह से नाले जैसी, लगभग भारत के सभी हिस्सों में नदियों का ये हाल हो चुका है, तो जो ये नाले जैसी स्थिति में ये नदियां पहुंच चुकी हैं तो ये जो ह्यूमन वेस्ट को लेकर के जा रही हैं और बहुत सारे तरह के औद्योगिक कचरा भी उसमें मिल रहा है, तो ये सारा लेकर के जो जा रही, तो नदियों के किनारे का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड वाटर भी उससे जा करके कंटामिनेटेड हो रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सरफेस वाटर पे तो थोड़ा ट्रीटमेंट कर सकते हैं लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसको कोई ऐसा तो है नहीं कि इकट्ठा है कि आप उसको ट्रीट कर लीजिए। तो सरफेस वाटर तो ट्रीटमेंट हो भी सकता है, लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो आर्सेनिक की प्रॉब्लम इधर देखी गई, उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, बनारस का भी कुछ हिस्सा है वो प्रभावित है, बिहार के कई जिले हैं, बंगाल के तो अधिकतर जिले, लगभग कहते हैं कि 20-22 जिले उससे प्रभावित हैं आर्सेनिक से। और आर्सेनिक शुद्ध कैंसरस होता है, मतलब उससे कैंसर होना ही है अगर आप नियमित पीते हैं। ये देखा जा रहा है कि आर्सेनिक की प्रॉब्लम कैसे सामान्य रूप से, तो एक सामान्य सा टिप्स ये है कि अगर आपको पता है कि इस पानी में आर्सेनिक है तो उसका ना इस्तेमाल करें, बल्कि और कोई सोर्स आप ढूंढें जिस पानी को, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें सबसे बढ़िया, साफ पानी होता है उसमें कंटामिनेशन भी बहुत कम होता है, उसको आप जमीन में डालें तो जो पोल्यूशन है वो भी थोड़ा सा मतलब कम होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जो आर्सेनिक प्रभावित पानी है उसको आप खुले में रख दें, धूप में रखें, तो कहते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि 50% आर्सेनिक धूप में उड़ जाता है, तो कुछ इस तरह से करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्य बात कि लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं कि है कि प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़े तबके में लोगों को पता होने के बावजूद भी लोग ठीक है बीमारियां हो रही हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती है हमारे सरकार के सामने भी और जन संगठनों के सामने कि वो कैसे उसको पार पाएंगे।
शिराज जी, पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में लैंगिक समानता का मुद्दा क्यों प्रमुख माना जाता है, और दक्षिण एशिया में विशेष तौर पर भारत में कैसे इस मुद्दे को संबोधित किया जा रहा है?
ये जो लैंगिक समानता का है, और एक बात समझ लेना चाहिए कि स्वच्छता सैनिटेशन पानी के मतलब पूरे एस्पेक्ट्स में पहला है, कि पानी को अगर हम स्वच्छ नहीं रख पाएंगे, साफ नहीं रख पाएंगे, और जहां हम रहते हैं वहां पर हम नहीं स्वच्छता बना सकते, तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होती है तो औरत होती है। ऐसे में ये बहुत बड़ा चुनौती बन जाती है कि ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं, पानी की उपलब्धता और उसकी प्रदूषण और उससे जुड़ी हुई समस्याएं, फिर उसके बाद जो सैनिटेशन का सवाल है, स्वच्छता का सवाल है, ये दोनों सवाल औरत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं और सबसे पहले प्रभावित करते हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे पहले प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें जो भी इस संबंध में हमें प्लानिंग बनानी है उसमें उस तबके को आगे रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा महसूस कर सकती है उस समस्या को, ज्यादा समझ सकती है कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो उसको आगे रख करके जब आप पूरी प्लानिंग बनाएंगे, उसको आगे रख करके, उसको देख करके पूरी प्लानिंग बनाएंगे, तो निश्चित है कि आप एक बेहतर स्थिति पैदा कर सकते हैं। पानी और सैनिटेशन का जो सवाल है, अगर दक्षिण एशिया के स्तर पर अगर इन दोनों सवालों को देखें तो भारत से बहुत अच्छी स्थिति नहीं बाकी देशों की, मैं मानता हूँ। पाकिस्तान में भी औरत के संबंध में और इस लैंगिक समानता के संबंध में देखा जाए तो सैनिटेशन की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा, नेपाल चूंकि अभी भी इतना ज़्यादा शहरीकरण नहीं हुआ है तो वहाँ अभी उतनी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी जैसे बांग्लादेश में भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, श्रीलंका में और छोटे छोटे जैसे मालदीव में और इस तरह के जो हैं देश, इन सब में यही स्थितियां हैं कमोवेश जो भारत में स्थितियां हैं, लगभग कमोवेश वही स्थितियां हैं। थोड़ा बहुत वहाँ शहरीकरण और अभी, लेकिन जो गांव का समाज है वहाँ भी अभी सैनिटेशन का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे अगर सरकार जैसे कोशिश कर रही है कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन चला रही है और भी बहुत सारे संगठन कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में, तो इन कोशिशों के बाद थोड़ा अब गांव में समझ तो पैदा हुई है कि हमें इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अभी वो प्रयास, अभी बहुत कोशिशों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें।
शिराज जी, पानी की समस्या MDGs से किस तरह संबंधित है, इसे MDGs के साथ क्यों शामिल किया गया है, तथा यह विकास से कैसे संबंधित है?
अगर किसी भी तरह के विकास को देखें, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखिए आप, चाहे जो भी इस समय डेवलपमेंट के आप जो भी परिभाषाएं बना सकते हैं, कहते हैं कि अगर साफ पानी उपलब्ध नहीं होगा तो ये विकास आप जो 10% या ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं वो जीरो के माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। पानी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो बिना पानी के नहीं चल सकती आप, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री के लिए तो पानी रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जहाँ पर पानी प्रोसेस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री हैं कि जहाँ पर पानी की उपलब्धता ही तय करती है कि वो इंडस्ट्री कहाँ लगेगी। अगर पानी उपलब्ध है तभी इंडस्ट्री लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो इस तरह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जो मैं कहना चाहता हूँ कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, अगर आपको इस देश में क्या पूरी दुनिया में अगर एक जो नीचे का तबका है उसको विकास के मुख्य धारा में लाना है तो बिना पानी के बात किए हुए वो उनको नहीं ला सकते। साफ पानी की उपलब्धता, स्वच्छता की उपलब्धता, साफ पानी पीने लायक हो वो उसकी उपलब्धता, बिना इसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आप पूरा नहीं कर सकते। सन 2000 में जब ये तय किया गया था तब यही सोच करके तय किया गया था। और ये जो शहरीकरण और दिल्ली जैसे बड़े शहर बने हैं तो इनके लिए इस समय आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पानी कहाँ कहाँ से नहीं लाया जाता। हिमाचल में अभी रेणुका डैम पे अभी एक नया बांध बना करके और दिल्ली जल बोर्ड और बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से साफ पानी लाया जाए। हरिद्वार से पानी, साफ पानी लाया जाता है और भी कई जगहों से साफ पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कल को ये हरियाणा के लोग कहें या हरिद्वार के लोग कहें कि हम दिल्ली को साफ पानी नहीं देते तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली के क्या हालात होने वाले हैं। और झुग्गी और गरीब लोग तो प्रभावित होंगे लेकिन ये जो विकास की मुख्य धारा और में जो लोग जी रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। उनको भी फिर तय करना पड़ेगा कि दिल्ली रहना है कि नहीं रहना है। तो बिना पानी के आप किसी भी विकास की, किसी भी तरह के विकास की आप बात नहीं कर सकते। और पानी से ही पर्यावरण भी है। अगर आप पर्यावरण की बात करें तो पानी नहीं होगा तो पर्यावरण भी नहीं होगा, और पर्यावरण नहीं होगा तो फिर आप बाकी विकास की तो कल्पना बहुत दूर की बात है।
चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूँ कि पानी और पर्यावरण दो ऐसे मुख्य मुद्दे हैं कि आदमी को, हर आदमी को इस पर सोचना चाहिए। विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ऐसे बहुत सारे दिवस मनाने का यही एक मंशा होती है और उनके पीछे विचार होता है कि हम पानी और पर्यावरण को स्वच्छ रखें और बचाएं। क्योंकि पानी और पर्यावरण के प्रति अगर हम संवेदनशील नहीं हैं तो इसका मतलब कि हम जीवन के बाकी हिस्सों के प्रति और जीवन के आने वाले आदमी के भविष्य के प्रति संवेदनशील नहीं है, ये मैं मानता हूँ।
सिराज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आपको भी धन्यवाद।
स्वागत है आपका कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज में और आज हम बात कर रहे हैं विश्व जल दिवस के बारे में।
अनीता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पीने के पानी तक पहुंच बनाना बहुत जरूरी है।
सुरेश, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नए दिशा निर्देश भी बनाए गए हैं।
और ये कार्यक्रम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है।
दोस्तों, जल सबकी जरूरत है, इसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती।
मानव, पशु, पेड़ पौधे और खेत खलियान सब पानी पर निर्भर हैं। आज हर गांव, छोटे बड़े नगर में पानी की समस्या एक जटिल समस्या है और अंधाधुंध कटते पेड़ ये सब भूमिगत जल के समाप्त होने के प्रमुख कारण हैं।
जिस तरह रसोई घरों में पानी की बर्बादी होती है उसका आंकलन करना असंभव है।
प्रतिदिन ताजा पानी भरने के लिए बासी पानी को बहा दिया जाता है, अर्थात हर घर में करीब 30 से 35 लीटर स्वच्छ और पीने योग्य पानी नालियों में व्यर्थ हो जाता है।
हर सुबह पानी के पाइपों द्वारा अपने बरामदे के फर्श धोना, गार्डन में पानी डालना आदि सब किया जाता है, जबकि यही कार्य बाल्टी से भी किया जा सकता है जिससे पानी की बहुत बचत होती है।
दोस्तों, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम हर साल काफी पानी की बचत कर सकते हैं।
पानी की बूंद बर्बाद न हो इसके लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए।
दोस्तों, हम स्वयं पानी का निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए प्राकृतिक संसाधनों को दूषित न होने दें और पानी को व्यर्थ न गवाएं।
दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का।
इस विषय पर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम एक दुनिया एक आवाज, केयर ऑफ वन वर्ल्ड साउथ एशिया, C5 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016।
आप हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर है 0114168900 और हमारा एक्सटेंशन नंबर है 116।
दोस्तों, किसी कारणवश अगर आप हमारा कार्यक्रम रेडियो पर ना सुन पाए हों तो आप हमारी वेबसाइट www.edaa.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं।
इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार के दिन शाम 4:30 बजे एक और नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनीता और सुरेश को दीजिए इजाजत।
नमस्कार।